हमारा गुरुजनों के प्रति कर्तव्य है, धर्म है। देश के प्रति, समाज के प्रति भी हमारा कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य है। ये भी तो उचित है, इसके बिना हमारा संसार ठीक रूप से श्रृंखला पूर्वक मर्यादा पूर्वक नहीं चल सकता। किंतु कृष्ण ये कहते हैं कि ये आत्मधर्म नहीं है, सनातन धर्म के सोपान है। यदि सीढ़ी नहीं रहेगी तो मंदिर में ऊपर कैसे जाएंगे, इसलिए सीढ़ी की जरूरत है। किंतु सीढ़ी ही हमारा सब कुछ नहीं है, सोपान ही सब कुछ नहीं है। इसलिए जब हम उस तत्व को पा जाते हैं, मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सोपानों में ही आबद्ध रहेंगे, हम ऊपर नहीं उठेंगे। एक पहली सोपान को छोड़कर के दूसरी सोपान में चढ़ो, फिर उस पर पैर रखकर के, फिर उससे पैर उठा करके ऊपर में चलो, फिर ऊपर में चलो। ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों को ये बतला रहा हूं कि साधारण रूप में जो लोग साधारण रूप में जो धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं, धर्म का सोपान है। इसलिए कृष्ण ने उनको छोड़ने का उपदेश दिया। थोड़ा सा संक्षेप में ये बतला दूंगा आप लोगों को। जैसे महाराज हरिश्चंद्र थे, बड़े भारी सत्यवादी थे, और साथ ही साथ में जिसको जो दे देते थे, वचन दे देते थे, फिर लौट आते नहीं थे। प्राण जाय और वचन न जाय, रघुकुल की यह रीति है। उसी कुल में ये भी आए थे। ये समझते थे कि ये राज्य मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये हमारा सब कुछ प्रजा है, और इसमें से हम जो कहते हैं वो सत्य है, और अपने सत्य पर डिगना नहीं चाहिए, उस पर आना चाहिए। विश्वामित्र जी ने देखा तत्वदर्शी जी, ये इसी में लपट रहे, धर्म के रहस्य को समझा नहीं। ये सनातन धर्म का प्रथम सोपान है। इसी शरीर को मैं और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, ये तो माया है, इसी को समझे। इसलिए स्वप्न में ही आकर के राज्य मांग लिया। मांगने के बाद उन्होंने दे दिया स्वप्न में। दूसरे दिन आए, ले कुछ याद है, मुझे तो याद नहीं। अरे रात में हमको स्वप्न में तुमने राज्य दिया, कहां तो दे दिया, तो दे दिया, तो अब संकल्प करो। उन्होंने संकल्प किया कि मैं सारा राज्य इनको दे दिया, और जो संकल्प कराने की दक्षिणा दो। ब्राह्मण संकल्प किसी चीज का कराते हैं तो उसका संकल्प की दक्षिणा चाहिए। क्या दूं? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ठीक, खजानची एक मिनट की देर मत करो, खजाने खोल करके 10,000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। बीच में विश्वामित्र जी ने कहा, अरे धर्म ध्वजी, धूप मूर्त का तुम सत्य बोलता है, जब राज्य मेरा हो गया तो खजाना तेरा कहां रहा, या जितना मंत्रिमंडल है, प्रजाएं हैं, राज्य है, खजाना है, कोष है, सब ये मेरा हो गया है, कहीं दूसरी जगह से लाओ। कहां से लाए? अब कोई उपाय नहीं सुझा, मैं उपाय बतलाऊं, अपने को, अपनी पत्नी जो तुम्हारी अभी कहते हो, इसको बेचो। तो ठीक, हमें बेच दूंगा आपका, जब दक्षिणा दूंगा। तो वो बेचने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, हमारे राज्य में मत बेचना, क्योंकि वो तो मेरा है, हमारे राज्य से बाहर। तो देखा जाए तो पृथ्वी का राज्य हमारा, ये तो इनका दे दिया, आप कहां बेचे। तीर फूल लाने लगे। अच्छा, अभी उपाय बतला देगा, काफी त्रिशूल के ऊपर में है शंकर जी, वो ये पृथ्वी मंडल में नहीं है, तुम चले जाओ वहां पर बेचाओ। गए वहां पर, अपने को किसी तरह से किसी ने नहीं लिया, तो एक दो के पास में बेच लिया 5,000 मुद्रा। अभी 5,000 की जरूरत, और 700 को बेच दिया, छोटा सा बच्चा 2500 मिला, अपनी स्त्री को भी बेच दिया। जो चीज बेच दी जाती है उस पर अपना अधिकार नहीं रहता, इस चीज को समझो। और जब बेच दिया तो उनका वो बेटा और उनकी पत्नी नहीं रही, और अपने को बेच दिया तो यह शरीर भी तुम्हारा नहीं रहा, इसको भी बेच दिया तुमने। इसमें होना चाहिए था कि मैं भी चला जाए और मेरा भी चला जाए, किंतु वो गया नहीं। रात में एक दिन रोहितास्त्र को सांप बंद करके डस दिया, विश्वामित्र जी ने योग प्रभाव से उनको योग है डस दिया। और फिर रात में ही उनकी पत्नी तारा सभ्या वो उस बेटे को लेकर के गंगा जी में पहुंची, अश्वमेध घाट पर, जहां पर वो डोम बने हुए थे, क्रियाएं होती हैं, विलाप कर रही हैं। कोई भी सहायता के लिए नहीं, वो काशी भर में कोई नहीं है उनको, एकदम दीन ही। उस समय में हरिश्चंद्र जी बोले, कौन है यहां पर आई है, क्या है? इतने में बिजली कटी और देखा कि उनका बेटा रोहितास्त्र मरा पड़ा है, उनकी पत्नी उसको लिए हुए खड़ी हैं। कहा, ये खबरदार ऐसे संस्कार मत करना। बड़े दुखी तो हुए, किंतु अपना कर्तव्य जानते, यही हमारा परम धर्म है, इसलिए कहा इसका संस्कार बिना कुछ, यहां पर दान जो दिया जाता है बिना दिए नहीं कर सकते। कहा, मैं क्या हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जाओ जो भी कुछ दो, अपने कपड़े को चीर करके दो। रोती हुई विलाप करती हुई, हमारे स्वामी राज्य भर के राजा महाराजा धीराज, मैं उनकी रानी और उनका बेटा ये, आज हम असहाय खड़े कर रहे हैं। आज विधाता भी हमारे ऊपर में इतना निष्ठुर, हरिश्चंद्र भी बड़े निष्ठुर बन गए हैं। और उसमें बिजली थी, देखा जब ही वो चीर कप को अपना फाड़ने के लिए गई देने के लिए, उसी समय में महाराज विश्वामित्र जी धर्म स्वयं वहां पर उपस्थित हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारे इस तत्व ज्ञान को देने के लिए आया था, ये शरीर मैं नहीं हूं, तू अपने को राजा समझता था, बेच दिया तो भी तुम अभिमान रखते हो, और इसको भी बेच दिया तभी अपनी पत्नी और पुत्र मान करके आंखों से आंसू तुम्हारे छलक आए, ये मोक्ष। हम सभी भगवान के पुत्र हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, हमें उसे भूल करके इस संसार में नाता जोड़ लिया है दो दिन का, यह सब तुम्हारा हरिश्चंद्र नाम भी ये मिथ्या है, तुम्हारा राज्य भी, तुम कितने दिन के लिए ये यहां का राजा, अब तू राजा नहीं, ये बेटे भी तुम्हारे नहीं, इसकी शाश्वत सत्य को समझो, ये शाश्वत सत्य है, इसलिए जीवित रहने पर भी ये समझो कि इसके अंदर जो मैं हूं भगवान का पार्ट पार्सल और लिप्त दास हूं। उन्होंने जो कुछ हमें दिया है साथी, उसको संभाल करके उनकी सेवा करके इस जगत से भजन करके चले जाएंगे, मालिक मत बनो, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेश पदा करें। यह जो धर्म उनका था, ये धर्म नित्य धर्म नहीं है, ऐसे धर्मों को छोड़ने के लिए कहा, पहले इसको लेते हुए चलो। किंतु बोध होने के बाद में कृष्ण ने कहा, ऐसे शरीर संबंधी मन संबंधी जो अनित्य धर्म है उनको छोड़ो, जो भक्ति संबंधी नहीं है। किंतु ये नहीं कहा जो भक्ति को भी छोड़ दो, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरण भज, ये भगवान की शरणागत होना यही भजन है, भक्ति है, यही नित्य धर्म है, इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। अब हम इसी को और विशेष रूप से बतलाने के लिए तुलसी के रामायण के प्रसंग पर आ रहा हूं। रामचंद्र जी लक्ष्मण भर शत्रुघ्न का विवाह जनकपुरी में हुआ, बड़े धूमधाम से अयोध्या लौटे। इतने में भक्त जी के मामा जी आए और भक्त शत्रुघ्न को महाराज जी से कह करके ले गए अपने भैंस काय काय देश में, ये कुछ दिनों के लिए मैं ले जाना चाहता हूं। लेकर के चले गए। इधर कुछ दिनों में ही महाराज दशरथ की कुछ उमंगे जगी। उन्होंने वहां के प्रजाओं के मंत्रिमंडल का विचार सुन करके उन्होंने ठीक किया कि रामचंद्र जी को युवराज बना दिया जाए। बहुत योग्य है गांव पूर्वास मंत्रिमंडल और उनके जितने वशिष्ठ इत्यादि गुरु वर्ग हैं वो सभी लोग ऐसा चाहते हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने महाराज वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ से और उनके मंत्रिमंडल के जितने ब्राह्मण थे उनको कहा, मैं चाहता हूं कि यह काम झटपट हो जाना चाहिए, मृत्यु का कोई ठीक नहीं, मैं कब मर जाऊं, इसलिए यह अवश्य कार्य में। सुन करके बड़े लोग प्रसन्न हो गए और सब लोगों ने निर्णय किया ये कल बड़ा शुभ दिन है। कौन सा शुभ दिन?
रामनवमी।
ये दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, दिन सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र इत्यादि सब लग्न इत्यादि बड़े शुभ हैं, वही दिन है। तो कल के दिन में उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। सब मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करके कल के लिए ठीक किया गया और बड़े बड़े दूतों को पृथ्वी के जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां से अभिषेक के लिए सामग्रियां को लाने के लिए सब सागरों का जल तीर्थों का जल लाने के लिए भेजा गया, जैसा कि रामायण में वर्णित है। और सारी चीजों को रात भर के अंदर में ही सब कुछ प्रस्तुत कर लिया गया, ढिढोरा दे दिया गया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। आप लोग ये सभी चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। भरत और शत्रुघ्न को आने की भी प्रतीक्षा नहीं की गई। इसके बाद हुआ क्या, मंथरा और कैकेयी के ऊपर में दोष लगा और रामचंद्र जी को बन जाना पड़ा। रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और सीता जी को इच्छा नहीं रखने पर भी उन लोगों की आग्रह से उनको भी साथ लेकर के वन गमन उन्होंने किया। वन गमन करते के बाद में वो श्रृंगेरपुर और चित्र होते हुए और वो चित्रकूट में पहुंचे। और इधर जब श्रृंगेरपुर से उनके मंत्री और रथ चालक जो उनको ले गए सुमंत जी लौट करके आए और सुना जी राम को चले गए। दशरथ जी हा राम और हा राम नहीं कर सके, हा रा कहते हुए प्राण चले। भरत जी को संदेश भेजा गया, उनको उन्होंने बतलाया नहीं गया, उनको ऐसे ही वो सुन करके आए सुने। और घर में अशगुन हो रहे हैं तरह तरह के, दिन में सिगाल दास बोल रहे हैं, गधे रो रहे हैं, कौवे रो रहे हैं, बिना बादल के ही
वज्रपात
उनका पास सो रहे हैं। देख करके भरत जी को बड़ा कुछ भय था। इतने में दूत पहुंचा, दूत ने महाराज कैकेयी को उनके मामा को खबर दिया कि भरत और शत्रुघ्न को महाराज वशिष्ठ जी ने जल्दी से बुलाया और कोई संवाद नहीं कहा। भरत और शत्रुघ्न वहां से आए, जब आए तो देखा जैसे अयोध्यापुरी विधवा जैसी बनी हुई, स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया। कहते ये क्या बात हो गई। सोचे जी अभी महाराज हमारे पिताजी से भी मिलेंगे, कहाँ में मिलेंगे, और मेरी मैया के भवन में ही मिलेंगे, कौकेयी के भवन में सीधे गए। वहां देखा तो कुछ स्तंभित से हो गए, देखा जी और कोई नहीं, मंथरा और कैकेयी वहां पर है। और मंथरा कैकेयी को देखा जी सिर में सिंदूर नहीं सफेद कपड़े पहने हुई हैं, हाथ में चूड़ियां कंगन कुछ नहीं। देख करके क्या हुआ, कैकेयी ने बहुत आदर के साथ में उनका स्वागत करते हुए भीतर ले जाने की गई। नहीं, नहीं पिताजी कहाँ है? पिताजी पर रोक सिधा गया। अच्छा भैया कहाँ है राम? वो तो बनने चले गए। लक्ष्मण जी साथ में गए, पिताजी भी गए। अच्छा क्यों गए, क्या बात हुई? वो पीछे बतलाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए ही राज्य मांगा, राज्य मांगा, और राज्य मांगने से और भरत के तुम्हारे लिए राज्य मांगा और उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा कि तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये मांगा। अच्छा मेरे लिए तुमने आज से तू मेरी मैया, मेरे लिए संबंध कटा, फिर मत कहना तू मेरी मैया नहीं है। आज राम यदि हमारे ऊपर में क्रोधित नहीं होते तो आज ही तुम्हें प्राण दंड देता, मार डालता। और शत्रुघ्न जी ने मंथरा के कुब्जे पर, कुब्जा को मुझे कुब्जा के कुबड़ पर एक लात मारा और घसीटने लगे मारने लगे। भरत जी ने दया करके छुड़वा दी। इसके बाद उन्होंने कौशल्या जी से मिले, बड़े रोने लगे। ये बहुत हृदय श्रावक कथा है। तत्पश्चात भरत जी वशिष्ठ इत्यादि जी को लेकर राम को मनाने के लिए, उनको राज्य देने के लिए, लौटाने के लिए, राज सिंहासन लेने के लिए, विनती करने के लिए चतुरंगनी सेना और माताओं के साथ में चले चित्रकूट में। उनको पता लगा कैकेयी को नहीं ले जा रहे थे, किंतु और कैकेयी का भी साहस नहीं था जो उनसे कह सके। कौशल्या जी से बोली ये बहन भरत मुझे ले नहीं जाएगा, उसने हमारे साथ में संबंध विच्छेद कर लिए, किंतु तेरी बात को वो पलट नहीं सकता, इसलिए तू हमारे लिए कह दे ये भरत हमको भी साथ दे। कौशल्या जी ने बड़े आदर से भरत से कह करके उनको भी साथ लिया। कैसे चाहती थी कि मैं चल करके वहां पर कहूंगी कि मैंने अपने वचन ले लिया, तुम अयोध्या लौट जाओ, इसलिए वो जाना चाहती थी। अब अनुताप कर रही हैं इसलिए वो भी गई। चित्रकूट में किस प्रकार से पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी को कैसा भाव आए, भक्त के साथ में युद्ध कर उसे मार डालूंगा वो नहीं जानता है, पृथ्वी यदि उसकी रक्षा करे, शंकर की रक्षा करे तभी नहीं उनको मैं मार डालूंगा। राम ने उनको समझाया, फिर किस प्रकार से उनका मिलन हुआ ये सब आप लोग जानते हैं। वहां पर जाकर जाने के बाद में पहले दिन तो इसी तरह से बीता। दूसरे दिन रामचंद्र जी सुने कि पिताजी पर रोग सिधा रहे, उनका वहीं पर पिंडदान किया नदी में। और इसके बाद में उस दिन भोजन तोजन कुछ नहीं हुआ, परस्पर ऐसे ही साधारण बातें होती रही। इतने में वहां पर विदेह राज जनक भी वहां पर पधारे अपने मंत्रियों के साथ में। तीसरे दिन वहां पर एक सभा जुड़ी, जो ने पुष्टि ऐसा ऐलान हुआ कि ऋषि महर्षि लोग भी और अयोध्यापुर और जनकपुर से जितने आए हैं और यहाँ के रहने वाले ऋषि महर्षि हैं, कल एक सभा होगी, उसमें क्या करना चाहिए इस पर विचार होगा। उसमें भक्त के विचार भी सुनने जाएंगे और राम के भी विचार, और फिर ये सभा होगी महाराज जनक के सभापति जो हैं, क्योंकि वो विदेह हैं, समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, निश्चित होने आने के बाद। आज भरत को नींद नहीं आई, सोच रहे कैसे राम को मैं लौटा करके ले चलूं और वो अयोध्या के राजा बने और हम भाई सब मिल करके उनकी सेवा करें। निर्मल संत जैसे स्नेह होता है, प्रीति होती है भाई के प्रति, उससे भी कहीं अधिक आजकल हमारे भाइयों में ऐसा नहीं। राज्य को गेंद बना दिया, वो उधर पैर से ठुकरा रहे हैं, उधर से वो ठुकरा रहे हैं, कोई नहीं लेना चाहता। आजकल एक पैसे के लिए भाई को भी प्राण बध कर देते हैं। ये सब चीजें इनसे शिक्षा करनी चाहिए। भरत जी रात में मां कौशल्या जी के पास में गए, बोले मैया मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं। क्या? राम, तुम्हारा आदेश कभी भी उलट नहीं सकती, जरूर स्वीकार करें। इसलिए तू मैया हमारे तरफ से राम को कह दे, आदेश दो कि वह अयोध्या लौट आए और राज्य लेना स्वीकार करें। मैया तू चिंतित होकर के बोली, बेटा तू कहता है वो तो बात ठीक है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं गलत कहता हूं? गलत नहीं कहते, तुम ठीक कहते हो। भाई किसका बच्चा है, जरा इस बच्चे को लेकर के संभालिए, ले जाइए। किसका बच्चा है, इस बच्चे को संभालिए।
मैं भूल बोल रहा हूं,
पिताजी हैं तो पिता या माताजी को ले। मैं क्या, मैं भूल बोल रहा हूं, गलत बोल रहा? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत नहीं कह रहे, किंतु राम जी तो नहीं गलत कह रहा, राम जी गलत नहीं कह रहा, वो भी कहता है वो ठीक कहता है। यदि केवल कैसे ही कही होती तो मैं कह करके बदल देता था, किंतु तुम्हारे पिताजी का भी आदेश उसमें दोनों का सम्मिलित है, इसलिए माता पिता दोनों का आदेश वो पालन कर रहा। मैं कैसे उसको कहूं, मैं नहीं कर सकता। बहुत उन्होंने रोया, गिर गिराया, किंतु मुझे से मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो गए वशिष्ठ गुरु के, रात्रि में नींद नहीं आ रही, वशिष्ठ जी जगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु जी आपके चरणों में कुछ निवेदन करने के लिए आया हूं, कृपया करके हमारी विनती सुनिए। मैं ये चाहता हूं राम के बिना अयोध्या नहीं है, और मैं चाहता हूं कि राम अपने पिता के बड़े संतान हैं, राज्य पर उन्हीं का अधिकार है, अतः यह राज्य उन्हीं का है, इसलिए उनका राज्य तिलक किया जाए, वो अयोध्या को लौट जाए। उन्होंने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मैं भी चाहता हूं ऐसा ही हो, रामचंद्र लौट आए। तो बात तुम जितनी सहज समझते हो बात इतनी सहज नहीं है। तब एक बात हो सकता है, जहां सर्वस्व जा रहा हो उसमें यदि आधा भी मिल जाए तो अच्छा, जहां सब कुछ जा रहा है वहां पर आधा भी कोई चीज मिल जाता है तो उसमें बुद्धिमान संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो तुम इस प्रकार से संपूर्ण की आशा ना करके आधा करो। क्या आधा? ये कि तुम राम के बदले बन चले जाओ, तुम और छोटा भैया तुम्हारा शत्रु और राम लक्ष्मण सीता जी को लौटा दो, ये तो हो सकता है। तो बड़े खुश हो गए, ये तो मैं जरूर कर सकता हूं, ये तो होना ही चाहिए, तो मैं जाने के लिए बनने तैयार हूं। बल्कि ये भी मैं कहता हूं कि यदि राम यदि लक्ष्मण को दोनों को लेकर के लौट जाए और हम दोनों भाई चले जाए तो अति उत्तम है, और नहीं तो राम यदि वन में जाना ही चाहते हैं तो मैं उनके साथ जाऊं, लक्ष्मण जी और सीता जी लौट जाए, ठीक है? अरे बहुत ठीक। अच्छा, और तीसरा भी एक संकल्प है, वो क्या? कि हम तीनों भाई चले जाए वन में और राम और सीता जी लौट जाए, तो और भी अच्छा है। तो ठीक है, कल हम इसके लिए प्रयास करेंगे, हम सभी। किंतु भरत जी संतुष्ट नहीं हुए, वो गए सुनैना जी के यहां। सुनैना कौन है? जनक जी की पत्नी, सीता जी की मैया। अरे बेटा तुम रात में कैसे आया? तो इसलिए कल सभा होने वाली है, मैं राम के बिना मर जाऊंगा, अयोध्या की सारी मर जाएगी, और इसका पाप किस पर लगेगा? इसलिए आप एक बात कीजिए, सीता की क्या स्थिति है अभी जो जा रही है वन में, बिना खाली पैर जा रही, छाते भी नहीं, जंगल में सांप बिच्छू और राक्षस भरे पड़े हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे? रात में स्वयं है डंक मारेंगे, तब भिक्षु और सब। इसलिए आप क्या चाहते हैं, जो सीताराम वन में जाए, बेटा मैं तो नहीं चाहते। तो आप महाराज जनक से कह दें जो इस पर विचार करके और राम को आदेश दे दें, क्योंकि हम और राम दोनों भी, दोनों के पिता इस समय में महाराज जनक हैं, वो जो कह देंगे वही होगा, इसमें हम लोग विचार नहीं करेंगे, इसलिए उनसे कह दिया जाए। तो मैं जा करके अभी उनसे कहूँ, अभी तो वो ध्यान में है, जरा उठ जाएंगे तो मैं उनसे निवेदन करूँ, तुम जाओ बेटा निश्चिंत रहो। चले आए, नींद नहीं आई। फिर किसी प्रकार से सब लोग स्नान स्नान करके सभा जुड़ी, सामने में ऋषि महर्षि लोगों विराट समूह बैठा। चित्रकूट में सब समय संतों की भीड़ रहती है, भरद्वाज भी चले आए, वाल्मीकि भी चले आए, और बड़े बड़े ऋषि और वशिष्ठ जी तो हैं वो लोग भी आए, और एक तरफ में अयोध्या का पूरा समाज मंत्रिमंडल के साथ में माताओं को आगे करके बैठा और भरत जी उसके आगे बैठे, और एक तरफ में श्री रामचंद्र जी और जनक इत्यादि लोग बैठे। महाराज जनक ने कहा, भरत महाराज तुम्हारा क्या इसमें कथन है, तुम बोलो तुम क्या कहना चाहते। मैं राम का भी कथन सुनूंगा, तुम्हारा भी कथन सुनूंगा, और इसके बाद में जैसा सब लोगों ने मेरे ऊपर में भार दिया है, मेरे गुरु शंकर जी हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं, जैसा उचित होगा मैं कहूंगा। भरत जी ने कहा, पिताजी के बाद में आप ही हमारे संरक्षक हैं, आप जो कुछ कह देंगे भला बुरा मैं मान लूंगा। राम ने कहा कि आप भी जैसा कह देंगे हम उसको मानने के लिए बात करेंगे। मैं जानता हूं कि आप बिना विस्तार सोचे विचार नहीं करेंगे और धर्म के रीति के अनुसार में कहेंगे, इसे आपकी बात को मानेंगे। सब लोगों बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी ने कहा, मैं चाहता हूं ये वंश के पिताजी के बड़े पुत्र हैं, राज्य के अधिकारी हैं, इसलिए इनका राज्य सिंहासन होना चाहिए, अयोध्या को उनको लौट जाना चाहिए। मैं चाहता हूं यदि ये नहीं लौटते हैं तो मैं राम के साथ में जाऊं, अथवा हम दोनों भाई जाने के लिए तैयार हैं, ये रुक जाए, या तीनों भाई हम लोग चले जाएंगे, ये पिताजी को ले लौट जाए, मैं ये चाहता हूं। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं पिता के वचन के लिए मैं आया, फिर भी आप जैसा कहेंगे हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने ध्यान किया, शंकर जी को प्रणाम किया, कुछ देर के बाद में चिंतन करने के बाद में बोले, जो देखो मैं सब प्रकार से विचार किया, विचार करके मैं ये देखता हूं कि भरत में प्रेम का अगाध समुद्र भरा है, और प्रेम नीति और मर्यादा को भी डुबा देता है, इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर जीत भरत की है। मेरी बात को समझ रहे हैं, भरत जो हैं इनका प्रेम इतना अगाध है कि राम की मर्यादाएं इत्यादि भी इसमें डूब सकती हैं, इसलिए प्रेम के आगे स्नेह के आगे मर्यादा इत्यादि का विचार नहीं होता, इसलिए भक्त की जीत है, इसलिए भक्त जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। किंतु एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, प्रेम की भी मर्यादाएं हैं अपनी। भरत प्रेम का अगर अपने समुद्र है यह बात ठीक है, और उसमें राम मर्यादा के हिमालय हैं, सुमेरु पर्वत हैं, ये मर्यादा उस स्नेह में प्रेम में डूब जाएगा, किंतु वो भी अटल रहेगा, इधर उधर तट से मत नहीं होगा, राम की भी मर्यादाएं हैं। प्रेम किसको कहते हैं पहले समझो, प्रेम उसको कहते हैं हमारा आराध्य जो है, प्रेमास्पद जो व्यक्ति है, आराध्य है उसके प्रति जो प्रेम है। प्रेमी को यह देखना चाहिए कि वो क्या चाहता है अपना ही विचार न देखे, अपने विचार के दृष्टिकोण से मैं सेवा करता हूं यही बहुत है, ये नहीं। वो क्या चाहता है और तब उसके अनुसार में कार्य करें। भरत भले ही ये चाहता है कि अयोध्यापुरी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूंगा, किंतु क्या उसने सोचा, क्या उसने सोचा राम कितने सुखी होंगे? जरा राम से पूछ करके देखिए वो क्या चाहते हैं। आ रहा है समझ में? अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कम अर्जनावृतम अंकुल प्रश्नानुशीलम वक्तना। हम रामचंद्र जी यहां पर आराध्य हैं, भरत जी उनके आराधक हैं, बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, किंतु सेवा तो प्रकार से होती है। सेवा करता हूं मैं अपने मन से अप्रसन्न हूं उसमें, भले ही हमारे जो आराध्य हैं उनको सुख है कि नहीं, हमको प्यास लग रही है हम पानी पी रहे हैं तो उनको भी पानी दें, हमको ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े पहने,